أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. آیت نمبر 65 سے 79 تک سورہ النحل آج دیکھیں گے. واللہ انزل من السماء ماء, اور اللہ تعالیٰ نے اتارا آسمان سے پانی کو. فأحیا به الارض, پھر زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو, بعد موتیہ اس کی موت کے بعد. ہم جیسے کہ گزشتہ اپنے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں, جب سے سورہ النحل شروع ہوئی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بار بار اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو یاد دلاتے ہیں, اپنی نعمتوں کو یاد دلاتے ہیں, اور ان سے توحید کو بیان کیا گیا کہ تمہیں یہ نعمتیں دینے والا کون ہے. سوچو تو صحیح, سمجھو تو صحیح, اس میں بھی تمہارے لیے نشانی ہے. دیکھیے نشانی کس لیے ہوتی ہے, بار بار آیت آتا ہے نا, اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً, اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً. تو آیت کیا ہوتی ہے, نشانی. نشانی سے آپ کسی کو یاد کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں نا یہ فلاں کی نشانی ہے, وہ کوئی رنگ ہے, کوئی دوپٹہ ہے, آپ نے اپنی کسی پیارے کا رکھا ہوا ہے, آپ اس کو کہتے ہیں, اس کو دیکھ کے آپ کو اصل میں وہ یاد آ جاتا ہے. تو آپ کہتے ہیں یہ اس کی فلاں کی نشانی ہے. نشانیوں سے اس کی یاد آتی ہے جس کی وہ چیز ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. اب دیکھیں کہ یہ کائنات بھری پڑی ہے نشانیوں سے, اور یہ کس کی نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کی, جس نے ان کو پیدا کیا. ان سب چیزوں کو پیدا کرنے کا وہ ایک ثبوت ہے اس چیز کا کہ ہمارے بنانے والے کو سمجھو, پہچانو, ہمیں دیکھو اور جانو کہ ہمارا پیدا کرنے والا کیسا ہوگا, کون ہوگا, وہ ایک ہوگا یا زیادہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ اس سورہ میں بار بار, کیونکہ توحید کے گرد گھوم رہی ہے نا یہ سورت, بار بار ان نشانیوں سے توحید کو بیان کرتا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ انسان کی توجہ اس طرف دلا رہا ہے کہ غور تو کرو, دیکھو تو صحیح, سمجھو تو صحیح, سوچو تو صحیح. اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کو کہ آپ روز دیکھتے ہیں. ایسی کوئی اچمبھا چیز نہیں ہے کہ کوئی سمندر کی تہوں کے اندر جا کے کسی چیز کی اگزامپل دی گئی ہو جو کہ سب نے نہیں دیکھی ہوئی. نہیں, ایسی چیزوں سے مثال دی گئی ہے جو کہ روزانہ آپ دیکھتے ہیں, کہیں آسمان کی, کہیں زمین کی, کہیں پرندوں کی. آج بھی دیکھیں بارش کی, کس نے نہیں بارش دیکھی ہوئی, سب بارش کو ایکسپیرئنس کرتے ہیں. لیکن بارش بھی کوئی سبق دیتی ہے. وہ سبق کیا ہے کہ اس کو نازل کرنے والا ایک خدا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت پتہ چلتی ہے اس سے کہ انسان دیکھیں بارش نہیں برسا سکتا, یہ رب ہی ہے جہاں چاہے بارش برسائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے ہی نازل کی ہے بارش آسمان سے, پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے. زندہ کیسے ہوتی ہے زمین, کہ وہ زمین جو مردہ پڑی ہوئی ہے, بنجر پڑی ہوئی ہے, اس میں بھی پودے نکلنے لگتے ہیں, ہریالی آ جاتی ہے. یہ اس کی زندگی ہے, یہ اس کی لائف ہے, پتا موتیا, کیونکہ وہ مردہ تھی. اور یہیں سے ہمیں اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ جیسے بارش ہے اس کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے, اسی طرح ایک اور بارش بھی ہے. یہ بارش جو آپ دیکھتے ہیں یہ زمین پہ پڑتی ہے, ایک اور بارش ہے جو وحی کی بارش ہے, وہ مردہ دلوں کے اوپر پڑتی ہے. تو مردہ دل جو ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں, ان کے اندر ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی. تو ایک وہ بارش ہے اور ایک یہ قرآن کی بارش ہے. آپ بتائیے جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا تو دل کیسے مردہ تھے, اور جب قرآن پڑھ لیا تو یوں لگتا ہے دلوں کو واقعی زندگی مل گئی. اللہ تعالیٰ کی بات حق ہے, واقعی دل یوں لگتا ہے کہ روشن ہو گئے, لہلہانے لگے, جیسے زمین مردگی کے بعد زندہ ہو جاتی ہے, اس طرح اللہ تعالیٰ وحی کی بارش سے دلوں کو زندہ کر دیتا ہے. اور اللہ کے حکم سے یہ بارش بھی نازل ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں, اللہ ہی کے حکم سے وحی کی بارش بھی نازل ہوتی ہے. हाँ, मगर बाज दिल तो बंजर जमीन से भी ज्यादा सख्त होते, पत्ता के पत्थरों से भी ज्यादा सख्त होते, फिर उनके ऊपर वही की बारिश भी असर नहीं करती। वरना जो आम दिल होता है ना, वो जिंदा हो जाता है। तो अगर दिलों की जिंदगी चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? वही की बारिश में अपने दिल को सैराब कर लेना चाहिए, वही की बारिश के आगे अपने दिल को रख दे। इन्ना फी दालिकल आयत लिल कौमी यस्माउन, इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो सुनती हो। अब सुनते तो सारे ही, सभी सुनते हैं, काफिर भी सुनते हैं, मोमिन भी सुनता है, कान तो सबको लगे। ये सुनना वो सुनना नहीं है, ये दिल की आंख से दिल के साथ सुनना है। अगर दिल साथ शामिल नहीं तो सिर्फ कानों से सुनना, तो फिर वो तो चौपाए भी सुनते हैं, जानवर भी सुन रहा है। आप देखें कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सब सुन ही रहे हैं ना, लेकिन उनके सामने आप कुरान पढ़ें या उनको जिबा करने की बात करें या आप कोई आफत की बात करें या कोई अच्छी बात करें, उनको कोई भी नहीं फर्क पड़ता। इसी तरह पास इंसान भी होते हैं, वो भी चौपाइयों की तरह सुनते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया ना, वला हम आदान ला यस्माउना बिहा, इनके कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल ना फरमाना जिनके कान हों भी तो सुनते ना। देखिए सूरह मुल्क में है ना कि जब लोग जहन्नुम के अंदर जल रहे होंगे ना, तो वो उस वक्त फरिश्ते को कहेंगे, तुम बदबख्तों यहाँ पे क्यों आ गए, तो तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? तो वो आगे से जवाब देंगे, हाँ आया था लेकिन हमने सुना नहीं, काश हम सुन लेते। सुनने की बात वो भी करेंगे, तो क्या उनके पास कान नहीं थे दुनिया में? क्या वो बहरे थे? नहीं, वो बहरे नहीं थे, उनके पास कान थे लेकिन वो कान से हियर करते थे, लिसन नहीं करते थे। हियरिंग में और लिसनिंग में फर्क होता है। हियरिंग है तो कोई भी आवाज आपके कानों से टकरा के चली जाए, लिसन है कि दिल में जाते, सोच समझ के सुनना। तो जानवरों की तरह ना जिंदगी गुजारे कि देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन ना वो देखना किसी काम का ना सुनना किसी काम का। अल्लाह तकूनु कल्लदीना कालू समिअना वहुम ला यस्मऊन, अल्लाह तआला ने फरमाया उन लोगों की तरह ना हो जाए जो कहते हैं हमने सुना लेकिन वो सुनते नहीं है, क्योंकि कानों में आवाजें बस टकराती हैं। बहुत से लोगों के आगे कुरान भी पढ़ा जाता है लेकिन बस एक आवाज है जो टकरा रही है, एक लेक्चर है जो हो रहा है, उसके बाद उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं और चले जाते हैं, गोया कुछ सुना ही नहीं। ऐसा सुनना जानवरों का सुनना होता है। इंसान इससे बालातर है कि वो जानवरों की तरह सुने, इससे अबव है इंसान। फिर भी अगर कोई जानवरों जैसे ही सुनने और देखने के अमल को करेगा तो अपने आप को कितना गिरा लेता है एक जानवर की सतह पे। बल्कि आगे बात आएगी कि ये तो जानवरों से भी गए गुजरे हैं। तो सुनने सुनने में भी फर्क होता है, और हमने कौन सा वाला सुनना है जो दिलो दिमाग के साथ सुनना होता है, ठीक है, जिसमें आप गौर से सुनते हैं। समझ आ गई अब बात कि सुनना कैसे है? हमने नहीं ना हो कि पूरी क्लास खत्म हो जाए और क्या सुना क्या कहा गया कुछ पता ही नहीं। वा इन्ना लकुम फिल अनआमि लइबरा, बेशक तुम्हारे लिए चौपाइयों में भी इबरत है। इबरत जानते हैं किस चीज को कहते हैं? इबरत वो चीज होती है कि जिससे फायदा उठा के ना इंसान तजर्बे के बगैर ही गलती से बच जाता है। हम कहते हैं ना इबरत हासिल करो इससे, यानी अब आप ये वाली मिस्टेक दोहरा के और ये इसी अंजाम को ना पहुंचे, बल्कि आप इससे ही लर्न कर ले, दूसरे के तजर्बे से आप लर्न कर ले। इनमें भी इबरत है, इनमें भी इंसान के लिए सबक है, इनमें भी इंसान के लिए कोई मैसेज है। और देखिए अल्लाह ताला आम फहम बात, यानी जो बातें सबको समझ आ जाती हैं उनसे मिसालें दे रहा है। अन आम कौन से होते हैं? वो वैश्य जानवर, ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, इनको अनआम कहते हैं। जैसे हम सूरतुल अनआम पढ़ भी चुके हैं, इनमें भी बहुत सारी निशानी है, मगर एक निशानी की तरफ यहाँ पे गौर हमें करने की दावत दी गई है। पहले हमने और भी निशानियां पढ़ी है ना, कि इनमें तुम्हारे लिए बहुत सारे फायदे हैं, इनकी ऊन में, इनके बालों में, इनके चमड़े में, इनके इनके गोश्त और इनके जो इनसे फवायद हैं, जो इनसे सवारियां तुम करते हो, इसमें बड़ा सबक है। ठीक है, आज एक और चीज की तरफ इशारा किया गया कि देखो, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनी ही, हम पिलाती हैं उसमें से जो उनके पेटों में है। यानी आप बकरी, भेड़, इनके भी दूध होते हैं, ऊंटनी का भी दूध होता है, गाय का दूध तो पीते ही हैं। तो चलिए हम गाय की तरफ बात करते हैं, क्योंकि उसका सबको समझ है। अल्लाह ताला फरमाता है, कौन पिलाता है उससे दूध? हम पिलाते हैं उसके पेट से, मिम बैनी फर्स वदमिन, फर्स के, गोबर के और खून के दरमियान में से। क्या चीज? लबनन खालिसन, लबन दूध, खालिस साइगन लिशारबीन, खुशगवार है पीने वालों के लिए। कैसे? इनके पेटों में देखिए, गोबर भी वही है, खून भी वही है, लेकिन उनके बीच से एक ऐसा दूध निकल रहा है जो खालिस दूध है। उसमें जरा सी भी आमेजिश नहीं, जरा सा भी असर नहीं, ना रंग में, ना जायके में, ना खुशबू में, क्योंकि गोबर की स्मेल आ रही हो। हालांकि पेट तो एक ही है ना, पेट तो एक ही है ना, उसी पेट के अंदर गोबर भी है उसके और खून भी अंदर ही है। अब गोबर की कितनी स्मेल होती है, आप इनके बाड़े में चले जाएं कितनी स्मेल आती है, लेकिन दूध आप निकालते हैं उसमें स्मेल नहीं, खून का एक कतरा भी शामिल नहीं, दूध बिल्कुल साफ सफेद, उसमें पिंक भी नहीं है कि चलो एक दो कतरे खून के भी अंदर शामिल हो गए। ये कौन तुम्हें पिलाता है? ये अल्लाह पिलाता है। ये फैक्ट्रियां कहाँ लगी हुई हैं? इस पेट में। येट ये हाल है कि आप जिबा करें जानवरों को तो दूध नहीं निकल आता अंदर से, गोश्त तो निकलेगा, खून निकलेगा, मगर दूध तो उसकी उसका गैलन नहीं निकल आएगा। कहाँ से आता है ये दूध? अल्लाह ताला फरमाता है, नुस्की कुम, हम पिलाते हैं तुमको। तुम अगर ऐसी फैक्ट्री बनाना चाहो तो जमीन पर कितने एकड़ जमीन लेनी पड़ेगी, कितनी मशीनरियां लगानी पड़ेंगी, बिजली चाहिए होगी, कितनी लेबर चाहिए होगी, तब जाके कहीं ये दूध की पैदावार होगी। कितना फिर आप देखें, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, कितना चाहिए होगा, तो तब कहीं जाके वो भी इस खासियत का दूध नहीं बनेगा। आज डब्बे के दूध बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो बात नहीं। आप देख लें आपकी किस तरह अल्लाह ताला पिलाता है, कितनी गजाइत है कि दूध जो है मुकम्मल डाइट है। अब इस फैक्ट्री को तुम देखते हो, चलती फिरती फैक्ट्री जिससे फ्रेश दूध निकाल लेते हो आप, वरना दूध को देखें आपने कहीं रखना हो बाहर ऐसे पड़ा हुआ हो तो एक दिन में खराब हो जाए, लेकिन चलती फिरती फैक्ट्री से उसी वक्त निकाल लो, उसी वक्त आप जिस वक्त चाहो फ्रेश निकाल के आपके सामने आ जाए। कौन सी कोल्ड स्टोरेज में अंदर पड़ा हुआ है? कौन सा फ्रिज है गाय के पेट के अंदर जिसमें वो रखा हुआ है? तुम सोचते नहीं। तुम इससे मिलने वाले फायदों को तो बड़ा एंजॉय करते हो, बड़ा मजा आ रहा है दूध पीने से, दूध को मतलब हमारे लिए कितनी गजाइत है उसके ऊपर तो बड़ी बातें होती हैं, इसमें इतनी ये कैल्शियम है, इसमें ये वाइटामिन है, इसमें ये, इस पे भी बात कर देते हैं, बोन्स के लिए कैसा है इसके लिए। लेकिन क्या कभी सोचा ये आता कहाँ से, कौन इसको देता है? हमारे लिए किसने इस जानवर को ऐसा बना दिया कि ये हमारे लिए कितने गैलन दूध ला रहा है? कहते हैं 8 गैलन दूध गाय के थनों में भर जाता है एक दफा में, और वो खाती क्या है? चारा, चारा जो बाहर जाके वो ग्रेस करती है, खेतों में, किरयानों में जाके खा लेती है। आज भी अगर लाके भी डालना पड़े चारा तब भी बहुत सस्ता है। और दूध की गजाइयत देखें, क्या चारे में वो गजाइयत है, क्या चारे में वो टेस्ट है जो दूध का है? फिर कैसे बन जाता है उस घास फूस से ऐसा दूध, कैसे बन जाता है जो इंसान के लिए इतनी जबरदस्त गजा है? और फिर देखें, चारा खाया उससे एक तरफ वेस्ट बना, एक तरफ गाय के लिए एनर्जी का सामान हुआ, और फिर तीसरा दूध बन गया जो उसके बच्चे के लिए भी काफी है और दूसरे बहुत सारे लोगों के लिए भी काफी है। ऐसा दूध इंसान बना सकता है क्या? पाउडर मिल्क बनाई है लोगों ने, लेकिन क्या ऐसी गजाइयत वाला बना सकता है? जो पाउडर मिल्क भी बनाते हैं वो क्लेम करते हैं कि ये उसका ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, इससे सोचते नहीं हो तुम? समझ नहीं आती इससे, कभी गौर नहीं करते? और फिर इसका पीना कितना खुशगवार है, कितना लजीज है, कितना फायदेमंद है, और आसानी से अलग से उतर जाने वाला है। यानी बाज दफा ऐसे होता है ना कि बाज लोग कुछ खा नहीं सकते, तो दूध उनको पिला दिया जाए तो मुकम्मल गजा उसको मिल गई, अलग से नीचे आराम से उतर जाने वाला है। किसी से इखलास के बारे में पूछा गया तो फरमाया, किसी अमल को ऐबों से पाक रखना, उसको खालिस करना है, जैसे दूध जो है गोबर और खून से पाक होके खालिस होके निकलता है। तो देखिए, इसी तरह अमलों को भी गंदगियों से पाक रखना है, ऐसे ही जैसे अल्लाह ताला गाय से दूध कैसे निकालता है। और इसकी खास सिफत जो बताई गई, देखो कैसे आराम से अलग से उतर जाता है, इसमें भी फायदा है इंसान का, पीने में कोई मुश्किल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को पसंद फरमाते थे, जब आपके लिए दूध पेश किया जाता था तो आप उसको जरूर नोश फरमाते थे। उम्मे फजल ने अरफा के दिन, ये देखने के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा है या नहीं है, तो दूध का प्याला पेश किया था कि अगर रोजा नहीं होगा तो दूध को कभी ना नहीं करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध का प्याला लिया था और सबके सामने पिया था, तो पता चल गया कि अरफा के दिन हाजी रोजा ना रखे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध पीते थे तो दुआ करते थे, अल्लाह मुबारक लना फी वजिदना मिन, यानी दूध के लिए स्पेशल अलग से दुआ है, बाकी चीजों के लिए तो वैसे ही दुआ है ना, लेकिन दूध के लिए ये वाली खास दुआ है। इससे आप दूध की अफादियत का अंदाजा लगाइए। फिर आप देखें, इसमें बड़ा ही जबरदस्त एक बात है कि माहौल कैसा भी हो, माहौल में गंदगियां हैं, इधर गोबर है उधर खून है, लेकिन इंसान को ऐसे ही खालिस रहना है जैसे दूध है। इंसान को उसके साथ अपने आप को लुथेड़ना नहीं है जो माहौल है इर्द गिर्द का, बल्कि अपने रब के लिए अपने आप को खालिस रखना, अपने अमल को भी खालिस रखना, अपने किरदार को, अपने अखलाक को, इधर उधर की गंदगियों में अपने आप को नहीं डालना। इर्द गिर्द चाहे माहौल कैसा भी हो, ये नहीं कि जैसा माहौल वैसे ही चल पड़े, जैसे इर्द गिर्द की फिजाएं हम भी वैसे ही हो गए, नहीं। अगर ऐसा होता तो आपको कभी दूध खालिस ना मिलता। तो अल्लाह ताला ऐसा कर सकता है, खालिस दूध निकाल दे दरमियान गोबर और खून के। हम अल्लाह ताला से दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे माहौल से जो गंदगियों का माहौल है, हर तरफ बेहयाई, हर तरफ गुनाह, हर तरफ बेईमानी, उस माहौल में कुफर और शिर्क के माहौल में अल्लाह तो हमें ऐसे खालिस बना देना जैसे तू दूध को खालिस करके निकाल देता है। और इसी में एक और सबक भी बहुत प्यारा सबक है, और वो ये कि देखें, गोबर और खून के दरमियान से ही निकल रहा है ना दूध, ऐसी चीज निकल रही है, तो जब हालात भी बुरे हों, ना मुवाफिक हों, उसके अंदर से भी अगर अल्लाह चाहे तो मुवाफिक हालात पैदा कर सकता है। इसमें कितना होप है ना कि इंसान ये ना सोचे कि अगर मैं घिर गया हूं मुश्किल हालात के अंदर और कोई वे आउट नहीं निकल रहा, तो दूध से सबक लें कि देखिए अल्लाह ताला जब दूध निकाल सकता है गोबर और खून के दरमियान से, अल्लाह ताला इस पर कादिर है तो मेरे लिए भी तो ऐसा रास्ता निकाल सकता है जो नामुआफिक हालात में बगैर किसी नामुआफिक हालात की आमेजिश के, बगैर किसी ऐसी चीज के जो कि मेरे लिए तंगी वाली हो, उसके बगैर मेरे लिए भी तो आसानी के रास्ते निकाल सकता है। और अल्लाह ताला से हम इसी तरह दुआएं भी मांग सकते हैं कि अल्लाह तू तो वो है जो फर्श और दम के दरमियान से लबनन खालिसन निकालता है, अल्लाह मेरे भी इन नामुनासिब हालात मुश्किल हालात में से आसानी निकाल दे, मुआफिक हालात निकाल दे। तो और इसी तरह ऐसे माहौल के अंदर से मुझे खालिस बना के उठा लेना, तो अल्लाह चाहे तो ऐसा कर सकता है। इंसान गौर व फिक्र करे ना तो इनके अंदर बड़ी एक सबक है, और अल्लाह ताला चाहे तो मेरी वेस्ट सी जिंदगी उसमें भी रमक पैदा कर सकता है, जैसे वो एक वेस्ट में से दूध निकाल सकता है, इस तरह मेरी बेकार जिंदगी को भी कारामत बना सकता है, इसी बेकार कोई ऐसा बना सकता है, इसी में से ऐसा मुझे खालिस करके निकाल सकता है। वमिन समरा वमिन समरात नखील, और भी निशानी है, और अगली निशानी क्या है, वमिन समरात और फलों में से, अन्नखील खजूर के, वलाना बरंगूर के, तत्तखिज़ूना मिन्हु सकरन व रिज़्क़न हसन, इसमें से तुम निकालते हो नशावर चीज और अच्छा रिस्क भी। यानी फलों की मिसाल अब देख के बताया गया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए फल भी पैदा किए, और दो फलों का सिर्फ जिक्र किया गया, क्यों, फल तो और भी बहुत से हैं, मगर जिनको अरब जानते पहचानते थे और इनको यूज करते थे बहुत ज्यादा, खजूर के ऊपर तो उनकी पूरे यानी पूरा एक मील ही हो जाता था उनके लिए, खजूर आपको पता है कितनी कॉमन आज भी अरब में है, तो उनको समझाया गया कि देखो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने कैसे फल पैदा किए, एक खजूर वो जो मुकम्मल डाइट है, खजूर खा लें तो ना काफी है इंसान के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई दफा कुछ भी नहीं होता था, खजूर के और पानी के ऊपर ही गुजारा करते थे कई कई दिन मुसलसल, तो इसका मतलब आप सरवाइव कर सकते हैं सिर्फ खजूर खा के भी। और अंगूर, और इसमें से खास तौर पे नशे की चीजें बनाते थे, शराब वो लोग बनाते थे इस टाइम तक, अभी जब ये आयात नाजिल हुई तो शराब हराम नहीं हुई थी, अभी उसके हुर्मत का हुक्म नहीं आया था, मगर देखें अब यहाँ पर एक इशारा, लतीफ सा इशारा है कि सकर को रिज़्क़न हसना से अलग किया गया, समझ जाए, एक सकर बनाते और रिज़्क़न हसना को अलग से मेंशन किया गया, इसका मतलब सकर रिज़्क़न हसना नहीं है, अच्छा रिस्क नहीं है, ये अच्छी चीज नहीं है। तो तुम इससे बहुत सी चीजें जहां बनाते हो वहां पर नशे की चीज भी बनाते हो और अच्छा रिस्क भी बनाते हो, तो इसके अंदर भी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फायदे रखे, इन फलों के अंदर भी फायदे रखे तुम लोगों के लिए, और खास तौर पे इन दो से ये चीजें बनती हैं। और आप देखें अंगूर भी बड़ा फायदेमंद, इसको सुखा के भी यूज किया जाता है, इसके शरबत भी बनाया जाता है, इसको ऐसे भी खाया जाता है, इसमें भी बड़ी अफादियत है, खजूर को भी खुश्क खजूर भी खाई जाती है, तर भी खाई जाती है, कई कई दिन तक ये इंसान के पास सेव रह सकती है, खराब नहीं होती, आप वैसे भी रख छोड़े तो खराब नहीं होती, कोई जरूरी नहीं कि फ्रिज में ही रखना जरूरी है, तो इन फलों में बड़े फायदे हैं। तो इंसान जब फलों को देखता है तो बस उनके मजे के ऊपर बात करता है, ये फलां जगह का की खजूर है, ये फलां जगह का अंगूर है, और इन जायकों में बात करता है, ये नहीं कभी सोचता कि किसने मिट्टी को बदल दिया खजूर में, मिट्टी और पानी को बदल दिया अंगूर में, जो पानी डाला था ना वो मीठा था, उसमें कोई मिठास नहीं थी ना मिट्टी के अंदर कोई मिठास थी, उससे कैसे ऐसे खजूर और ऐसे अंगूर निकल आए, सोचा कभी आपने? देखिए मट्टी है ना, उसके अंदर पौधा लगाया, आप उसको बस पानी ही देते हैं और क्या देते हैं, उसके ऊपर खजूर उग जानी जो इतनी मीठी है, कभी आपने नहीं देखा होगा फीकी खजूर कोई कहे, मिठास फुल ऑफ एनर्जी, अंगूर भी मीठे। तो कैसे ये बन गया, इसने ये निजाम चलाया? इंसान इन चीजों पे गौर करे। इन्ना फी दालिकल आया तल्ले कौमी याकिलून, इसमें एक निशानी है उस कौम के लिए जो अकल रखती है। तो सकर जो है ना, नशावर चीज, हर नशार चीज को फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो खमर है, और हर खमर हराम है। और फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिस चीज की कसीर मिकदार नशा करती है, वो उसकी कलील मिकदार भी हराम है। ये नहीं आप कह सकते वो हम तो थोड़ी सी पीते हैं, थोड़ी सी जिससे नशा ना हो, नहीं, थोड़ी भी हराम। और रिस्क हसन में सब वो खाने पीने के जो इस्तेमाल की चीजें जो जायज हैं, वो सब इसमें आ गई, जिसमें से भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी एनर्जी देती हैं जिस्म और अकल दोनों के लिए। और फरमाया, देखें पिछले में भी फरमाया इसमें निशानी है, अब भी फरमाया इसमें निशानी है, लेकिन कुछ खास लोगों को मेंशन किया जाता है, कहीं आया जो सुनते हैं, कहीं आया जो अकल रखते हैं। इससे हमें क्या समझ आती है? इसका मतलब हर एक नहीं इससे निशानी लेता, हर एक इससे बात को नहीं समझता, कोई खास लोग हैं जो समझते हैं, और भी कुछ बात समझ आती, सोचें क्या समझ आता हमें ना। अपने जहन को इस्तेमाल करना चाहिए कुरान में गौर और फिक्र करने के लिए, ठीक है? अभी मैं आपको बताऊंगी, आप खुद अभी सोचेंगे क्या समझ आई इससे। इन्ना फी दालिकल आयात लिल कौमी याकिलून, लिल कौमी यस्मऊन, कहीं लिल कौमी युमिनून, ठीक है? वअवहा रब्बुक इलन नहल, अब यहीं से इस सूरत का नाम सूरत नहल है, वही की तेरे रब ने शहद की मक्खी की तरह। ये कौन सी वही है? एक देखे वही तो वो है जो पैगंबरों के ऊपर आती है, और एक अल्लाह ताला एक जरिए से यानी किसी फरिश्ते को भेजता है, या पर्दे के पीछे से कलाम फरमाता है, या दिल में बात डालता है, वो वही है जिस जो किसी नबी के ऊपर आती है, और एक वही है जिस जिस जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है, यानी दिल में बात डाल देना, इल्हाम कर देना, खुफिया इशारा। तो ये वाली वो वही नहीं है जो नबियों के ऊपर आती है, ये वो वही है जो इंसान या किसी भी मखलूक की फितरत में अल्लाह ताला ने बात डाल दी होती है, उसको वही कहा जाता है, इल्हाम कर दिया उसको, उसके दिल में डाल दी है, उसकी नेचर में डाल दी है ये बात, ठीक है? और अल्लाह ताला ने जिसके अंदर जो चीज वही कर दी है, वो उसी के मुताबिक काम करता है। जैसे शहद की मक्खी के अंदर क्या बात डाल दी है, अनितखिदी के तुम बनाओ क्या, मीनल जिबाली पहाड़ों में से, बुयूतन घर, व मीन शजरी और दरख्तों में घर, व मीमा यारिशून और उनमें जो चढ़ाते हैं वो उनके अंदर घर बनाओ। यानी अल्लाह ताला ने शहद की मक्खी को ये बात इल्हाम कर दी, उसके दिल में डाल दी कि वो पहाड़ों में और दरख्तों में और ऊंची छपरों में घर बनाए। तो ये इनका जो घर है ना, वो भी एक बहुत ही अजीबो गरीब सी चीज है, जो शहद की मक्खी का छत्ता होता है, ये इतना ज्यादा एक हैरान कुन बात है, क्योंकि आप देखें कि इतना एक्यूरेट है वो, इस कदर उसकी मेजरमेंट हर तरफ से, यानी सिक्स साइड्स वाला एक वो बनाती है ना घर, जो उसके छत्ते के अंदर वो जो खाने होते हैं, उस सिक्स साइड्स के हेक्सागोन होते हैं, मुसद्दस जिसको कहते हैं। तो इंसान उन पे गौर करें तो अकल दंग रह जाए। आप कोई कंपस नहीं है, कोई रूलर नहीं है, उसके बगैर कोई मेजरिंग टेप नहीं है, उसके बगैर कैसे सारे खाने बराबर
जरा भी इधर उधर नहीं है। इन्होंने कहीं सीखा है क्या? कोई मैथ पढ़ा है? कोई क्लासें ली हैं? किसने इनको सिखाया? किसने इनको बताया ऐसे बनाना है घर, और इतना एक्यूरेट घर? इंसान भी किसी का कपड़ा भी सीता है ना, तो उसकी भी नापता है, इधर से नापता है, उधर से एक कोई मेजरिंग टेप रखनी पड़ती है। आपको कहें कि आप ड्रॉ ही करें ना, 6 साइड्स वाला एक खाना, तो आप रूलर पकड़ेंगे, इधर से सीधा करेंगे, इधर इंच इतना, इधर इंच इतना, इस तरह से करके आप बनाएंगे। हाथ से आपसे वैसे रफली नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इनको किसने सिखाया? कभी सोचते हो तो? ये बड़ा पहाड़ों पे ऊंची वहां पे जाके घर बनाती हैं, दरख्तों पे इनके छत्ते होते हैं, कौन सिखा रहा है इनको? कोई तो है जिसने वही किया हुआ इनके दिल में। और फिर देखिए अजीबो गरीब से घर, ऐसे घर के जिनका मटेरियल कहाँ से आया, उसे कभी सोचा आपने? ऐसे घर जिसके खाने, उनके दरमियान कोई स्पेस नहीं है, और इतनी डेडिकेशन के साथ बन रहा है, इतना ऑर्गेनाइज्ड वर्क हो रहा है, कैसे मिल मिल के काम कर रही है। एक कॉलोनी इसमें रहती है, अकेली अकेली नहीं, आप देखेंगे शायद कि मक्खी एक अकेली अपना घर बना के बैठी, कॉलोनी इसमें रहती है, थाउजेंड्स ऑफ देम एक छत्ते पे होती है। और किस तरह वो उस छत्ते को बनाती है, ऊपर से भी बना रही थी, नीचे की तरफ भी बना रही थी, ऊपर भी कतारें चल रही थी, नीचे को भी जा रही थी, जबरदस्त तरीके से और बाकायदगी से साथ, और इतनी कॉपरेशन के साथ। हमें इतना बड़ा सबक है ना, एक चींटियों की, हम सूरह नमल भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आएगी, एक चींटियों की कॉलोनीज का। आप कभी ये देखिए ना, इन चीजों को भी कभी गूगल किया करें, रिसर्च इस पे किया करें, हनी बीज कैसे काम करती है, हनी बीज के कैसे होता है, अक्ल आपकी हैरान रह जाएगी कि यार इनको इतनी अकल है। मैंने इसके ऊपर सारी ही रिसर्च की थी, तो थोड़ी 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 आपको बातें बता देती हूँ, इतना टाइम नहीं होता कि आपको मैं डिटेल में करूँ, आप खुद जाके भी देख सकते कैसे ये अपनी क्वीन बी को चूज करती है, कैसे ये काम करती है, आगे बात आएगी, कैसे ये अपने छत्ते बनाती है, कैसे ये उड़ उड़ के जाती है फलों का रस चूसने के लिए, और इनके छत्ते कितने एक्यूरेट होते हैं, कितना बाकायदगी से काम करती है, कितनी कॉपरेशन होती है आपस में। हमें 4 लोगों को बिठा दो, एक मुंह उधर कर लेगा, एक उधर कर देगा, वो उससे नाराज, तुम ऐसे नहीं, तुम वो, तुम इसके साथ नहीं मैंने काम करना, वो मेरी बात नहीं सुनती, वो इस तरह करती है, मिजाज ही नहीं मिलते, चाहे अल्लाह के रास्ते का ही काम कर लें। अब उस हमने हम इसके साथ चल नहीं सकते, ये नहीं देखते कि हमारा काम अहम है, ये देखते हैं कि हम किसके साथ चलें, जो मेरी दोस्त है, जिसके साथ मेरी बनती है, उसके साथ ही मैंने काम करना, चाहे वो किसी काम के काबिल ना हो, कोई और है हो सकता है जो बेहतर काम कर रहा है, लेकिन मेरी चूंकि उसके साथ नहीं बनती, या मेरा तो दिमाग इसके साथ नहीं मिलता, तो लिहाजा मैं इसके साथ तो काम ही नहीं करूंगी। हमारे अंदर कॉपरेशन नहीं है, हमारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, इतना डिसिप्लिन इनके अंदर। अगर वो भी एक दूसरे से लड़ने मरने पे ही आ जाए तो आपस में ही लड़ती रहे, एक दूसरे को मार दें लड़ लड़ के। कोई देखा है आपने कि लड़ी पड़ी हो वहां पे, मरी पड़ी हो, इनकी जंग हो रही हो? क्यों नहीं होती? वो भी तो कॉलोनी में रहती हैं, क्यों नहीं लड़ती एक दूसरे से? कैसे काम के लिए डेडिकेटेड जब कोई हो जाता है ना, तो फिर इन चीजों से वो ऊपर उठ जाता है। डेडिकेशन उनकी उनके काम के साथ है, भागी फिरती हैं, वो उधर रस चूस रही हैं, इधर आके हनी बना रही हैं, क्या कर, उनको ये नहीं कि हम आपस में लड़े, उनका काम जो है वो अहम है। और हैरान है साइंसदान भी कि कोई कोई नुक्स ही नहीं है छतों में, किसी छत्ते को भी देख ले उठा के, इनको किस तरह इतना पता चला, कैसे इतनी तेजी से वो बनाती है, ये ऐसी तेजी से बनाती है, आपको यही नहीं पता चलेगा शुरू कहां से हुआ था, ये स्टार्ट कहां से था इसका, इतनी लाइंस इनकी स्ट्रेट कैसे हैं, इतने एंगल्स कैसे एक्यूरेट है, और इतनी सारी लगी हुई है, कोई दूसरे के ऊपर मलामत नहीं, कोई दूसरे को कुछ कह नहीं रही। तो इसमें इंसान के लिए बड़ी इबरत की बातें, छोटे छोटे जानवरों में भी, इतना सा जानवर है, छोटा उसमें भी इबरत है। आप देखिए ना, इंसान को एक जानवर से ही सिखाया गया कि तुम और कुछ नहीं तो एक जानवर से ही सीख लो। अरे इंसान को कहीं और नहीं समझ आती, एक जानवर इनाफ है कि उससे इंसान अपने लिए सबक ले ले। फिर देखिए फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल समरात, फिर खा, ये भी इसको वही कही गई है, ये सारा वही का हिस्सा है कि अपना घर बनाओ और फिर खाओ कहां से, मिन कुल समरात, हर किस्म के फलों में से। फसलू की, फिर चलती चल जाओ, सुबुला रब्बी की, अपने रब के रास्ते पर, जुलूलन, जो हमवार है तेरे लिए, आसान है। अल्लाह ताला ने वही की और वो अल्लाह की वही को ओबे करती है, वो वही काम करती है जैसे अल्लाह ताला ने उसको वही की हुई है। और आप देखिए एक वही हमें भी तो की गई है, मगर हम कितना उस वही के मुताबिक चलते हैं। एक शहद की मक्खी से ये ले लें कि उसको जैसे बताया गया वैसे ही वो काम कर रही है, टस से मस नहीं होती, अपनी अना को नहीं बीच में लेकर आती। और देखिए अपना मकसद पूरा कर रही है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उसको पैदा किया। अगर कायनात की हर चीज ही देख लें अपना मकसद पूरा कर रही है और अपनी हद में रहती है, जिसको जिस काम के लिए पैदा किया ना वो वैसे ही कर रहा है। इवन कुत्ता तक है ना, हम चाहे उसको पलीत कहें, चाहे उस नापाकी नापाकी के हमारे इश्यूज होते हैं, लेकिन वो भी अपना काम कर रहा है जिस मकसद के लिए उसको पैदा किया गया, उसी को हर चीज पूरा कर रही है। अल्लाह ताला ने इंसान को भी तो किसी मकसद के लिए पैदा किया, वो फिर क्यों नहीं वो मकसद पूरा करता। तो देखें फिर वही के मुताबिक वो चलती फिरती है, रस चूसती है फलों से फूलों से, उन रास्तों पर चलती है। और आप देखें कि साइंसदान बताते हैं कि जो रास्ता ये लेती है ना किसी जगह पहुंचने के लिए, उसी रास्ते से वापस आती है, लॉस्ट नहीं हो जाती कि कहीं गई। और उसके बाद हमें तो देखिए कितनी डायरेक्शंस चाहिए होती हैं, जीपीएस कितना लगाते हैं, कई दफा हाईवे पे जा रहते हैं याद ही नहीं होता कि इस तरफ जाने का था कि आने का था, ये एक जैसा ही लगता है। और ये इसके लिए तो कोई सड़कें नहीं बनी हुई, और फिर भी कैसे हवाओं में जा रही है और उसको पता है कि मुझे कौन से रास्ते से वापस आना है। तो वापस आके सुबहान अल्लाह वो दूसरी मक्खियों को बताती है कि फलां जगह पे फल हैं, फलां जगह पे फूल हैं, उनका रस चूसना। उसके लिए उसको कोई जुबान है भला? वो घूमती है इस तरह हरकत करती, एट का हिंसा बनाती है और उससे बताती कितनी दूर है वो जगह, वहां पे क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, सब बताती है। अल्लाह अकबर, कैसे इतना नन्ना सा जानवर उसको इतनी समझ है, इसलिए कि वो रब की हिदायत पे चलती है। रब की हिदायत पे चलने वाला ही अपना मकसद पूरा कर सकता है, और जो रब की हिदायतों को छोड़ देता है तो फिर तो वो देखिए फिर तो उससे तो वो चाहे कितना भी पीएचडी है, कितना बड़ा साइंसदान है या बिजनेसमैन है या बड़ा टीचर है प्रोफेसर है कुछ भी है, सदर है वजीर है, मगर वो इंसान कहलाने के लायक नहीं, इसलिए कि वो अपना मकसद पूरा नहीं कर रहा। अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, जो अपना मकसद हयात ही पूरा ना करे तो वो तो चौपायों की तरह है, बल्कि चौपायों से भी गया गुजरा, इसलिए कि चौपाए भी तो अपना मकसद हयात पूरा कर रहे हैं, उनको जिस चीज के लिए पैदा किया गया वो वही काम कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया था कि इसका ध्यान बस मेरी तरफ रहे, ये तो अपना मकसद ही नहीं पूरा कर रहा, तो कैसे इंसान कहलाने के लायक, वो तो अनआम की तरह है। फरमाया लेकिन ये नहीं फरमाया उलाय का अदलुल अनआम, ये अनआम से भी ज्यादा गया गुजरा है, नहीं फरमाया ये अनआम की तरह है, दो स्टेप में बताया गया अनआम की तरह है, मगर फिर बताया गया नहीं अनआम भी अच्छे हैं इससे, क्योंकि वो अपना मकसद पूरा करते हैं, ये तो मकसद भी नहीं पूरा कर रहा, ये अल्लाह से बेवफाई करने वाला हो गया, जिसको अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया वो उस रब के खिलाफ ही खड़ा हो गया। सूरह आदियात में नहीं घोड़े की मिसाल दी गई कि घोड़ा देखो कैसे अपने मालिक के लिए दौड़ता है, भागता है, सुबह सवेरे निकल खड़ा होता है, दुश्मनों के अंदर घुस जाता है। फिर यहाँ पे शहद की मक्खी का बताया गया, देखो वो कैसे अपना काम पूरा कर रही है, कैसे वो वैसे ही कर रही है जैसे अल्लाह ने उसको वही किया। तुम किसी चीज पे तो गौर करो, कहीं तो देखो, आंखें तो खोलो, क्या इससे समझ नहीं आती? हर चीज अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पे चल रही है, इंसान तुम ही क्यों भागी हो? तो वो रास्ते पे अल्लाह के बताए हुए, देखिए यहां पे सुबुला रब्बी की कहा गया, अल्लाह के रास्ते के ऊपर, यानी अल्लाह ताला ने जो उसको रास्ता बताया उसके ऊपर चलती है। तो अल्लाह ताला ने हमें भी तो कोई रास्ता बताया कि नहीं बताया? कोई रास्ता हमें भी बताया, सिराते मुस्तकीम, ऐसा है ना, हमें भी तो एक रास्ता दिया गया है जिसका नाम है सिराते मुस्तकीम, हम भी चलते हैं कि नहीं? अगर नहीं चलते तो क्या हमसे एक मक्खी अच्छी नहीं है कि जो अपने रब के बताए हुए रास्ते पे ही चलती, जैसे उसको सिखा दिया गया वैसे ही करती है? जानदारों में देखें तो इसमें भी बड़ी ही मिसालें हैं, बड़ी मिसालें हैं। इनकी समझ क्या इतनी, उसको समझ है इतनी, उसके अंदर ब्रेन है, ये काम तो इंसान भी नहीं कर सकते जैसा वो कर रही है। आज तक इंसान नहीं शहद पैदा कर सके, खुद सोचे ना आप जरा कि हनी बनाना इंसानों के बस की बात नहीं, दूध बनाना इंसानों के बस की बात नहीं, इतनी अकल है इनको, इन जानवरों के, वो दूध भी बना रहे हैं, कोई शहद बनाने में लगा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई है जिसने इनको हमारे फायदे के लिए पैदा किया, जिसने इनको इस काम पे लगा दिया और वो डेडिकेशन से वो काम किए चले जा रहे हैं। अब वो रस चूसती है, कहीं फूल नजर आते हैं वहां जाती है, फल नजर आते हैं वहां जाती है, रस चूस के लेकर आती है, फिर अपने छत्ते में डालती है, फिर उसके बाद ये सारा काम फीमेल मक्खियां करती हैं, फीमेल, नर नहीं करते, नर का काम सिर्फ मेटिंग का होता है, और एक इनकी क्वीन भी होती है, मलका मक्खी, उसका जिस्म दूसरी मक्खियों से बड़ा होता है, ये चूज करती हैं। अच्छा उसमें भी नहीं है कि दो पार्टियां बना लें, लड़ लड़ के पागल हो जाएं, कोई कहे जी हमारी क्वीन बनाओ, दूसरे कहे हमारी क्वीन बनाओ, कुर्सियों के लिए तो कितनी लड़ाइयां होती हैं। तुम इनसे ही सीख लो, इतनी शर्म की बात है ना हमारे लिए, अकल समझ शहूर रखने वाला इंसान कितनी नीचली सदा पे गिर जाता है कि एक मक्खी भी उससे बेहतर हो जाती। तो वो फिर चूज करती हैं एक मलका मक्खी को, ये सारा मैंने उस पर पढ़ा है इसकी रिसर्च में कि कैसे, फिर और फिर तमाम मक्खियां उसकी इताअत करती हैं, वो सब पे हुकूमत करती है। और फिर जब वो सब मिलके उड़ती हैं, सब उसको अपने ऊपर उठा लेती हैं, और फिर जब अपने छत्ते से निकलती हैं तो एक आवाज निकालती है, भिलमिनाहट, उसी से वो वापस अपने छत्ते की तरफ लौटती हैं, अपनी रस चूस के लाती है, तो फिर उसको यहाँ पे आगे उगल देती है और वो शहद बनता है। अब आप शहद की मक्खी को उसकी डाइसेक्शन जरा करके देखें, उसको तोड़ के बीच में से खोल के देखें, कितना शहद मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। कैसे ही है सब कुछ, सोचते नहीं है। उसको ऑपरेशन करें जरा। तो ये नन्ही सी फैक्ट्री अल्लाह ताला ने लगा दी इतनी जबरदस्त चीज की, शहद जैसी चीज की, जिसमें इतनी अफादियत है, तो अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारा खादिम बना दिया। सब ये सब हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, कहीं गाय काम में लगी हुई, उसके अपने बच्चे को तो इतना दूध थोड़ी चाहिए होता है, वो तो दूध पी भी लेता तो इतना वाफिर होता है, कि जो इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने बनाया। तो अब वो ये काम कर रही है और मुख्तलिफ रास्तों पे चल रही है, फलों से ले लेके आ रही है रस, इंसान लगा के देखे ना ऐसी फैक्ट्री, पता चले ये ऐसा बना सकता है तब भी नहीं बना सकता, करोड़ों खर्च करके भी, एक एक फैक्ट्री लगाने पे कितने करोड़ों बनते, तब भी उसका आउटकम ये नहीं हो सकता, सुबह सवेरे ये निकलती है रस चूसने के लिए, जिधर की सूरज की रोशनी आती है ना उधर को जाती है, और वापस अंधेरे से पहले घर आ जाती है, और फिर अपना एक सेंट छोड़ आती है उस फल पे फूल पे कि जिस पे से रस चूस लिया है, ताकि दूसरी आए तो अपना टाइम ना वेस्ट करे यहाँ पे, कि उसी से चूसने शुरू कर दे कि मतलब मैंने चूस लिया यहां से, अब इसमें नहीं कुछ है, अब कहीं और जाओ। सुभान अल्लाह। और अपने काम पे डेडिकेटेड है, इसकी उम्र तकरीबन 2 महीने होती है, 30 से 60 डेज तक सिर्फ जीती है, ये इसकी मैक्सिमम उम्र है। सुभान अल्लाह, उसमें कितना बड़ा काम कर जाती है, 30 से 60 डेज, और इसमें इतना शहद बना लेती है, शहद का काम करती है, ऐसी चीज बनाती है जो कि लोगों के लिए कितनी फायदेमंद है, कितनी अफादियत वाली है। हम तो इतने सालों साल भी जीते हैं दुनिया में, तो कोई फायदेमंद काम ही नहीं करके जाते, नाकारा जिंदगी, नाकारा वक्त जाया कर करके चले जाते हैं। आए या नहीं आए बराबर है, दुनिया में किसी के काम के नहीं बनते। ये कितना काम कर जाती है छोटी सी नन्ही सी अपनी जिंदगी में, 1 घंटे में 24 मील का सफर तय करती है, इतनी दूर चली जाती फिर भी लॉस नहीं होती कि वापस किधर से जाऊं, घर कैसे जाऊं, और अपनी जिंदगी में इतना सफर करती है कि दुनिया का एक चक्कर या भी इससे भी ज्यादा मुकम्मल हो जाए। तो 1 पाउंड सिर्फ शहद बनाने के लिए 550 के करीब मक्खियां काम करती हैं, अपनी पूरी जिंदगी लगा देती है 1 पाउंड के लिए। हमारे पास कितने पाउंड आता है हनी, और हम कभी वेस्ट कर देते हैं, चमची पे लगा रह जाता है, उसको वैसे ही छोड़ देते हैं, और इसके लिए कितनी उड़ाने उड़ती है, कितनी उड़ाने उड़ती है अपनी सारी जिंदगी में, और पूरी जिंदगी में सिर्फ आधा टीस्पून शहद बना लेती है। तो आप ये देखें कि छोटी सी मक्खी है ना, और वो अपनी पूरी मेहनत करती है, अपनी पूरी जिंदगी लगाती है इस शहद को बनाने के लिए, थोड़े से शहद को थोड़ा छोटा सा बनता है, फिर भी गिव अप नहीं करती। इंसान इतना ही कर ले कि अपनी जिंदगी से कुछ तो फायदा दे, वो मखलूक कितनी मेहनत करके जा रही है, और हम कैसे हैं, हमारी एंटरटेनमेंट, रिलैक्सेशन, और कभी आज मैं थकी हूं, और कभी आज मुझे सुस्ती है, और आज मुझे डिप्रेशन है, और आज समर वेकेशन आ गई, आज विंटर वेकेशन आ गई, बच्चों की छुट्टियां हैं क्या करें, सर्दियों की छुट्टियां, गर्मियों की छुट्टियां, ईद की छुट्टियां, शब रात की छुट्टियां, मेराज की छुट्टियां, कुछ छुट्टियां ही नहीं हमारी तो खत्म होती। इसी तरह ये भी छुट्टियां करती रहे तो फिर तो 2 महीने तो उसके ऐसे ही गुजर जाएंगे, छुट्टियां करते करते या रिलैक्स करते करते। 30 लाख उड़ाने उड़ती है अपनी जिंदगी में, सुभान अल्लाह। और कॉपरेशन, कितनी कॉपरेशन के बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता, एक दूसरे से कॉपरेट करती है, दीन वालों के लिए ना हर एक काम के लिए कॉपरेशन जरूरी होती है, कोई भी काम कोई इंसान अकेला नहीं कर सकता, लेकिन दीन के मामले में तो बहुत ही कॉपरेशन चाहिए, क्योंकि एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करेंगे तो काम ज्यादा बेहतर हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे मूड बन जाते हैं। तो बहुत सबक है अल्लाह की इन छोटी छोटी नन्ही सी मखलूकात में भी कितने सबक है। फिर फरमाया यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबन मुख्तलिफुन अलवान, इसके पेट से निकलते हैं ऐसे शहद जिसकी मुख्तलिफ रंग है, और वाकई कहीं सफेद है, कहीं सुर्ख है, गोल्डन सा है, कहीं बिल्कुल स्याह रंग का भी शहद होता है, सभी मुफीद है इसके पेट से निकलते हैं। सुभान अल्लाह। फीही शिफाउन लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है, और शिफा उन क्या है, ये मतलब नहीं है कि हर तरह की बीमारी के लिए शिफा है, ये मतलब नहीं है, ये ताजीम के लिए कि इसमें बहुत ज्यादा शिफा है, अजमत इससे बयान की गई, शहद यानी इतनी शिफा है, ये कितनी इसके अंदर परफेक्शन है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखारी की हदीस में आता है कि मीठी चीजें और शहद बहुत पसंद था, और शिफा का तो ये बात है कि एक आदमी
नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा कि मेरा भाई जो है उसको डायरिया हो गया ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको शहद पिलाओ। वो अगले दिन आया, कहने लगा और ज्यादा हो गया। आपने फरमाया उसको और पिलाओ, फिर आया कहता और ज्यादा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पिलाओ, तो फिर हत्ता कि उसका पेट साफ हो गया। 3 बार आपने उसको यही फरमाया, ठीक है, क्योंकि आपने फरमाया कि अल्लाह ताला का कॉल सच्चा है, तुम्हारे भाई का पेट झूठा है। तो उसने फिर पिलाया तो शिफा हो गई। इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों की शिफा है और इसमें बहुत गजाइत है। इसके तो अब तो चूंकि इतनी रिसर्च आ चुकी है, आपको खुद भी ऑनलाइन भी पता चल जाएगा इंटरनेट पे कि कितनी इसके अंदर चीजों की फायदे हैं। इसके अंदर गुर्दों के लिए, आंतड़ियों के फेल को बेहतर बनाता है, इसमें कम कैलोरीज हैं चीनी की निस्बत, जल्दी खून में हल हो जाता है, दिमाग का काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, इसलिए कि दिमाग को शुगर चाहिए होती काम करने के लिए। इसमें ये दिमाग को काम करने में बहुत फायदा देता है। इसी तरह इंसान के लिए उसके बीपी को बैलेंस रखने के लिए बहुत अच्छा है, एसिडिटी नहीं करता, जल्द हजम हो जाता है, चिकनाई को हजम करने में मदद देता है, और इसको मशरूब के तौर पे भी पिया जाता है। इसमें B1, B2, B3 विटामिन भी है, फिर इसमें आयोडीन है, फिर कई दवाइयों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। मोतियाबंद की जो मरीज होते हैं उनके ऊपर भी इसका तजर्बा किया गया, तो उससे उनको फायदा हुआ, जिल्द की बीमारियों में, औरतों के जो खास अमराज होते हैं उसके अंदर ये बड़ा फायदेमंद है। खून बनाने का अमल तेज करता है, खून को साफ करता है, तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। गर्म होता है तो ठंडे इलाकों में रहने वालों के लिए तो और भी ज्यादा इसके अंदर अफादियत है, तो बहुत सारी बीमारियों का इसमें इलाज है। अल्लाह ताला ने देखे जानवरों को काम में लगा दिया इंसान के लिए, ये फायदे देने के लिए। कई मुर्गी अंडे दे रही है, हालांकि उस हर अंडे से थोड़ी उसके बच्चे निकल आते हैं, वो तो कम कम अंडों से चूजे निकलते हैं। कहीं गाय, बकरी, भेड़, ऊंट जो दूध दे रहे हैं, ये सारा दूध थोड़ी उनके बच्चे पी जाते हैं। कहीं ये नहल जो है ये शहद बना रही है, सारा शहद वो थोड़ी खा लेती है। सुभान अल्लाह। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो शिफा बख्शने वाली चीजों को पकड़े रखो, एक क्या है, शहद, और एक है कुरान। कुरान में भी शिफा है ना, शिफा है दिल के अमराज के लिए, शिफा है इसके अंदर। ये दिल के मरीज इस कुरान से अपने लिए शिफा पाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजों में शिफा है, पिछने लगवाने में, शहद के पीने में, और दाग लगवाने में, लेकिन मैं अपनी उम्मत को दाग लगवाने से रोकता हूँ, यानी आग से जो दाग लगाए जाते हैं उससे भी पहले इलाज किए जाते थे, और इंजेक्शन हैं और शहद, इन पे शिफा बताइए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन 4 जानवरों को कत्ल करने से मना किया है उनमें एक शहद की मक्खी है, हुदहुद है, लटूरा है, और चींटी है। अब फौरन आप पूछेंगे चींटी तो हमें काट लेती है, ये होता है, तो देखें अगर वो काटने वाली है, घर के अंदर आ जाती है, काटती है, उसके वजह से जरर पहुंचती है, तो फिर तो उसको मार सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं जैसे बच्चे चलते चलते बाहर है चींटी को मसल रहे हैं, आप चलते जा रहे हैं तो मैं चींटी को मसल दू अपने पैरों तले क्योंकि मैं मसल सकती हूँ, तो उस इसलिए उसको मसल देना, या बाहर शहद की मक्खियां घूम रही हैं पर वो अपना काम कर रही हैं, आपके पीछे थोड़ी आ रही हैं, आप उनको मारने चल पड़े, आपके घर के अंदर आके आपको इसका काटने का डर है, वो अलग बात है। तो इसके अंदर बहुत सारी हिकमतें हैं, यानी ये एक छोटी सी बेताकत सी चीज इतनी फायदेमंद शहद बनाती है, और इसका जो छत्ता है ना वो भी अफादियत वाला है, ये मोम बनाती है। मोम से बना होता है, और इसका आजादी से फिरना, अपने घरों घर आने को ना भूलना, रास्तों को ना भूलना, उन रास्तों पे चलना, ये सब चीजें गौर और फिक्र करने वालों के लिए ना बहुत इसके अंदर सामान है। इसीलिए फरमाया इन्ना फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफक्करून, जो गौर करेंगे ना उनको इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा अपने लिए। आप देखें, आप एक एक चीज को पकड़ के बैठ जाए, अगर आप इनका इनके ऊपर रिसर्च करें, आपको कितना मटेरियल मिल जाएगा। कई चीजें तो इंसान को समझ भी नहीं आती, कैसे मलका मक्खी के अंडे देती है, कि एक दिन के अंदर हजारों अंडे देती है, फिर कैसे ये शहद की मक्खियां, एक मक्खियां जो फीमेल हैं, जो अपना काम करती हैं, इसे पता चला कि देखिए काम फीमेल कर रही है और उससे कितने फायदा पहुंच रहा है। तो फीमेल ऐसे नहीं है कि नाकारा होकर के अपने आप को बैठ जाए कि मैं तो बस हांडी रोटी करूंगी और मेरा तो कोई काम नहीं है। इसके लिए दुनिया में आए कि खाने पकाते रहें और घर सजाती रहें और पहन पहन के और ओढ़ ओढ़ के बैठती रहें। नहीं, अपनी जात से फायदा पहुंचा देना, कोई ऐसा काम कर देना जो फायदेमंद रहे दूसरों के लिए, एक शहद की मक्खी से ही सीख लें। और इसकी फरमा बरदारी देखें अल्लाह ताला की, ये कितनी फरमा बरदार है कि उन्हीं रास्तों पर चलती है। हम खवातीन इससे ही सीख लें, मैं कितनी फरमा बरदारी करती हूं। तो मुसलसल मेहनत का भी सबक है इसके अंदर, मुसलसल मेहनत, मुसलसल काम, कोई टाइम वेस्टिंग नहीं है। बहुत सारे सबक हैं, आप जब इनके कॉलोनीज के बारे में पढ़ेंगे आपको काफी कुछ पता चलेगा। वल्लाहु खलकुकुम सुम्मा यतवफ्फाकुम, और अल्लाह ही ने पैदा किया है तुमको, फिर वो ही फौत करता है तुमको। मौत किसी इंसान के हाथ में नहीं, मौत किसी हादसे के हाथ में नहीं, मौत किसी बीमारी के हाथ में नहीं है कि कोई बीमारी है जो मार देगी, कोई हादसा है जो मार देगा। मौत भी अल्लाह ही की इज़्ज़त से आती है, उसी ने पैदा किया, वो ही उठाएगा। और मिनकुम, और जो फौत नहीं होता, तो तुम में से बास तो फौत हो जाते हैं ना बुढ़ापा आने से पहले, अगर जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है तो क्या होता है। वमिनकुम मन युरद्दु इला अर्ज़ल उमर, फिर कोई तुम में से ऐसा है जो फेर दिया जाता है हकीर उम्र की तरफ। कौन सी उम्र है? जिसमें इंसान की अकल जवाब दे जाती है, समझ खत्म हो जाती है, और लिकई ला यालम, इस तरह कि ना वो जाने बाद इल्म शैआ, इल्म के बाद कुछ भी, कि इल्म वाला था और उसके बाद कैसे हो गया, बिल्कुल बेइल्म हो गया, अकल ही नहीं रहती ना, समझ ही खत्म हो जाती है। वो ही इंसान जो बड़ा अपने आप को समझता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, आप मुझे बताएंगे, हमें क्या नहीं पता, हम सब कुछ जानते हैं, वो ही ऐसा हो जाता है कि उसको ये भी नहीं पता होता मैंने क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना हुआ है। मैं क्या अकल की भी बात कर रही हूँ कि बेअकली की कर रही हूँ, कि मैं क्या बोल रही हूँ, बिल्कुल समझ खत्म हो जाती। जहां उसकी और ताकतें जाहिल होने लगती हैं, वहां अकल समझ भी खत्म हो जाती है, इल्म भी खत्म हो जाता है। तवज्जो दिलाई गई कि इंसान हकीकत पे अपनी गौर करो, कौन है जो इस वजूद को लेकर आया दुनिया में, किसने तुमको वजूद दिया कि तुम ये बन के बैठे हुए जो इंसान, ये किसने वजूद दिया? अल्लाहु खलकुकुम, अल्लाह ने पैदा किया। कौन है जो वापस ले जाता है? कभी बच्चे की उम्र में कोई होता है तो बचपन में ही उसको उठा लिया जाता है, किसी को जवानी में ले जाया जाता है, कोई उधेड़ उम्र बुढ़ापे पे पहुंच जाता है, एड़ियां रगड़ता है बिस्तरों पर, घर वाले भी कहते हैं अल्लाह अब इसके ऊपर रहम कर दे, लेकिन अल्लाह ताला नहीं उठाता। और चलते चलते फिर वो वक्त आ जाता है कि वो रसील उम्र को पहुंच जाता है, ऐसी उम्र जिसमें कुछ समझ अकल काम करना बंद कर दे। ऐसा बुढ़ापा तारी हो जाए, हाफजा जाता रहे, ये भी वक्त आता है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्र से भी पनाह मांगी है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अल बुख्ली वल कसली वल हरमी व अर्ज़ल अल उमर व अज़ाब अल क़ब्र व फितनत अल दज्जाल व फितनत अल महया वल ममात। अल्लाह मुझे बखीली से, आजजी से, यानी सुस्ती से, बुढ़ापे से, रजील उम्र से, कब्र के अजाब से, दज्जाल के फितने से, जिंदगी और मौत के फितने से अपनी पनाह में ले ले। और ये उम्र जो होती है इतनी नाकारा उम्र होती है ना, इंसान किसी के लिए तो क्या करना है, अपने लिए भी कुछ करने के काबिल नहीं रहता। और बहुत जगह तो ऐसी अक्ल फिर जाती है, बहकी बहकी बातें करने लगता है, तो समझ ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कितनी बड़ी निशानी है कि वही इंसान, जब भी मैं किसी बहुत बूढ़े को देखती हूँ ना, यही बात मेरे जहन में आती है, ये वही इंसान है जो एक दिन कैसे जवानी की तवानाइयों में होगा, रानाइयों में होगा, चेहरा खिलता हुआ होगा, समझ होगी, अकल होगी, अकड़ के चलता होगा, ताकत होगी, कुव्वत होगी बाजुओं में, एक्टिवली भागता दौड़ता होगा। आज कैसे बुझ के बैठ गया एक कोने में, उसको डाला हुआ, जैसे बच्चे की उंगली पकड़ के आप ले जाते हैं उसी तरह बूढ़े का भी हाल हो जाता है। जैसे उस वक्त था ना जब पैदा हुआ, कुछ ना समझ, ना अकल, ना कोई दिमाग, ना कोई इल्म, बिल्कुल वापस उसी के पर चला जाता है, फिर से बच्चा बन जाता है। अल्लाह अकबर, क्या ये इतनी बड़ी निशानी नहीं कि तुम कुछ भी नहीं थे? चलो जब आप बच्चे थे उस वक्त तो कुछ भी नहीं पता कि क्या थे, लेकिन क्या बूढ़ों को नहीं देखते? फिर वापस उसके ऊपर चले जाना, वो इंसान जो अपने आप को इंडिस्पेंसिबल समझता है, समझते मेरे ऊपर कौन कोई बात कर सकता है, मैं इतना जानती हूं, मुझे पता है, कैसे बन जाता है? चाहे जुबान से नहीं भी बोले ना, हम अपने एक्शन से बता रहे होते हैं ये लोग, मुझसे हो तो सामने आए। ऐसी अकड़ होती है जवानी में, ऐसी ताकत का नशा होता है। और जवानी का तो खैर अपना ही एक नशा है, जवानी में तो इंसान किसी को समझते नहीं, माँ बाप को भी कैसी कैसी बातें सुना देते, सोच अपनी जवानी का बड़ा जोम होता है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला कैसे उसको वापस वहीं पे ले आता है। मन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, अल्लाह ताला ने फरमाया जिसको हम लंबी उम्र देते हम उसको वापस उसी हालत पे उठा देते, उसी साख पे, कि अकल ही उलट जाए। क्या ये वही है? पहचाना जाता है कि वही है? झुरियों भरा चेहरा, लगता है कभी इस पे जवानी आई नहीं थी, इतनी कमजोरी के लगता है कि कभी ताकतवर था ही नहीं, आए किस हाल को पहुंच गई। इसीलिए बहुत लंबी उम्र की किसी को भी दुआ नहीं देनी चाहिए। मुझे कभी अच्छा नहीं लगता कि लोग मुझे कहते हैं आपको बहुत लंबी उम्र दे, क्या करना है इतनी लंबी उम्र, क्योंकि बहुत लंबी उम्र रजील बुढ़ापे तक ही पहुंचाएगी। हाँ ये दुआ दिया करें, अल्लाह ताला आपको बरकत वाली उम्र अता फरमाए, ये मत कहा करें अल्लाह आपको लंबी उम्र दे दे। लंबी उम्र मीन्स बीमारियां, बुढ़ापा, बिस्तरों पे एड़ियां रगड़ना, मोहताजी। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन तुम में से वो है जिसको लंबी उम्र मिले और वो उसमें नेकियां करे, यानी नेकियां करने के लिए भी तो इसका मतलब है कि कुछ दिमाग चल रहा होगा, कुछ आजाद चल रहे होंगे, तो इतनी उम्र रहे जिसमें इंसान नेकियां कर सके, उसके बाद की क्या है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, अल्लाह ताला ने फिर ये दुआ करते थे ना, तो अल्लाह ताला ने रजील बुढ़ापे से बचा लिया था। 63 उम्र कुछ भी ज्यादा नहीं होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें चलते फिरते आपको उठा लिया गया। तो आपने देखा होगा कि बूढ़े जो ज्यादा हो जाते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे, और उनको समझाना भी बहुत मुश्किल होता है। कैसे एक इंसान जो अशरफ और मखलूकात है किस हद तक पहुंच जाता है। तुम समझते हो तुम बड़े इल्म वाले, तुम्हें बड़ा पता है, और फिर तुम, पहले हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह ताला उसको पैदा करता है तो उसके बाद बड़ा होकर क्या बन जाता है, हसीम मुबीन बन जाता है, बड़ा झगड़ालू, बड़ा झगड़ालू, बड़े दलीलें देता है, बड़े झगड़ते झगड़ता है। और इसकी औकात ये है कि इसकी उम्र बढ़ती जाएगी ना तो एक दिन इस मुकाम पे पहुंच जाए। गौर करें इन आयात पे, ये गौर व फिक्र वाली है। कभी ना भूलें कि ये जवानी, ये ताकतें, ये कुदरतें, ये सब कुछ एक दिन जायल हो जाएगा। फिर इंसान पास कितना भी पैसा हो जाए क्या करना है उस पैसे को, उसके पास ताकत ही नहीं है उस पैसे को एंजॉय करने की, उस पैसे को उससे कोई काम में लाने की। अकल ही नहीं है, समझ ही नहीं है, कुव्वत ही नहीं है, बस बिस्तर पे पड़ा हुआ और चलता फिरता भी है लेकिन अकल ही चली जाती। और अब आप देखें तो ये बिल्कुल, ये जो डायमेंशिया वाले आज ये बीमारी अब शुरू हो गई, पहले जमाने के अंदर इतनी नहीं थी, अब बहुत कॉमन हो गई है कि लोगों को ऐसी ही हालत पे पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल ही भूल जाता है, अपना नाम तक भूल जाता है, अपने प्यारे रिश्ते भूल जाते हैं, हद तक घर वालों के लिए तो वो ऐसे हो जाता है कि अजनबी है, क्योंकि वो किसी को भी नहीं पहचानते, वो तो खो देते हैं। बाज लोग अपनी वालदा का बताते हैं तो उनको लगता है कि हमारी तो वालदा हमारी माँ रह ही नहीं कहीं, क्योंकि वो पहचानती नहीं है किसी को, अपनी औलाद को भी पहचानना बंद कर देती। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला माफ करे और ऐसी ऐसी जिंदगी से भी महफूज रखे। एक और भी दुआ ना, लम्मा इन्नी औज़ु बिका अन उरद्दा इला अर्ज़ल उमर, यही बात अन उरद्दा कहते हैं ना, मैं युरद्दु इला अर्ज़ल उमर, तो उसमें भी अन उरद्दा इला अर्ज़ल उमर कि मैं लौटा दिया जाऊं रजील उमर की तरफ। औज़ु बिका मिन फितनति दुनिया व औज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ये हर नमाज के बाद पढ़े, क्योंकि इंसान इस जगह पे आ जाता है कि वो दूसरों के लिए इबरत की तस्वीर बन जाता है, इतना बेबस। और अगर ये बात समझ नहीं आती तो किसी ओल्ड होम में जाके देखें, जरूर जाएं, जाके देखें वहां पे बूढ़ों का क्या हाल है, जिंदगी की रमक भी खत्म हो चुकी, ख्वाब मिट चुके, उनकी आंखें बस अब मुंतजर हैं तो अपनी वापसी की। मौत भी इंसान के अपने हाथ में नहीं होती, वो जाना चाहे भी तो नहीं जा सकता जब तक अल्लाह का इज़्ज़त ना, वो बस एक ही इंतजार में है कि कब कब उनके लिए फरिश्ता आ जाए। और आप देखें कि अगर इंसान को जिंदगी मिलती है और मिलती चली जाती है, तो यही है उसका अंजाम, इससे बच नहीं सकता कोई, चाहे वो आज कितना ही फिट हो और अपने आप को कितनी क्रीमें और इंजेक्शन और सर्जरीज करा के जवान रखने की कोशिश करता रहे, कितनी अपनी हेल्दी डाइट खाता रहे, लेकिन एक दिन ताकत ने भी खत्म हो जाना और जवानी ने भी, नहीं रोक सकते। क्या ये समझ नहीं आती, क्या इससे पता नहीं चलता कि तुम कितने बेबस हो, तुम तो अपनी सेहत को भी नहीं अपने पास बरकरार रख सकते, तुम अपनी जवानी को अपने पास नहीं रोक सकते, तुम कितने बेबस हो, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, फिर भी इंसान फूले नहीं समाता, इंसान भूला रहता है, फिर भी इंसान यही समझता है कि नहीं, मैं ही कादिर हूं, मैं इन पावर हूं और ये इसी तरह मेरी जवानी चलती रहेगी हमेशा। आज अगर भागते फिरते हैं और तवानाइयां है ना, तो एक दिन ऐसा होता था कि इंसान की ये सब आज़ाई खुद उस साथ बेवफाई कर देते हैं, नहीं साथ देते, ना ज़हन साथ देता है ना जिस्म साथ देता है। फिर वही जो कभी किसी से काम कराने को आर समझता था, मैं क्यों किसी को कहूँ, मैं खुद अपना करूंगी, वही बेचारा किसी और के ऊपर पड़ जाता है। तो इससे पहचाने अपने रब को, पहचाने ये जो ताकत स्लो डाउन होती है ना, हम अभी रजील बुढ़ापे पे अल्लाह ना कभी पहुंचाए, लेकिन उस तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन ये जो वक्त का गुजरना है ना, ये हमारी ताकत को तो स्लो कर रहा है, दिमाग को स्लो कर रहा है, उस तरह की हिम्मत नहीं रहती, एक पीक आती है 30 पे पीक आ जाती है, फिर उसके बाद डाउन द हिल ही है, चलो 30-35 कह लें, उसके बाद क्या है, कोई इन बीमारियों से महफूज रह जाए तो बहुत ही शुक्र अदा करें, ना किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, और इंसान बेबस है, लेकिन कोई चीज को भी नहीं आप रोक सकते। अल्लाह अकबर, वही अकल, वही इल्म, वही ताकत जिसमें बड़ा नाश था, वही देखें कैसे साथ छोड़ जाती है। गनीमत जाने इस वक्त को जो आपको मिला है, ये हमेशा नहीं होगा, ये अकल हमेशा नहीं रहेगी, ये तवानाई हमेशा नहीं रहेगी, नहीं ताकत रहेगी। और हम इंतजार करते हैं कि ऐसे वक्त का कि जब ये हो जाएगा और जब वो हो जाएगा तब मैं कुछ करूंगी, तब मैं नेक बनूंगी, तब मैं कुरान पढ़ूंगी, तब मैं नमाजें पढ़ूंगी, मैं तब ये काम करूंगी। तो आपको पता है कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और इकरमा फरमाते हैं, बड़ी जबरदस्त ये बात है कि जो कुरान पढ़ने पढ़ाने वाले हैं उसकी ये आदत नहीं होती, रजील उम्र तक नहीं वो पहुंचता। तो इससे हमें पता चलता है कि कुरान पाक का पढ़ना, इसके साथ ताल्लुक जितना जिसका ज्यादा होगा ना, उतना वो ऐसे बुढ़ापे से बच जाएगा, अकल की फिर जाने से। जिसमें अकल चली जाती है ना, उससे वैसे तो बुढ़ापे की जाहिर है जो एक एज है उसके अंदर इंसान की ताकत तो नहीं रहेगी, लेकिन अकल का जो फिर जाना है ना, उससे ये लोग महफूज रहते हैं। और आप वाकई देखें, मैं तो बहुत सारे लोगों से ये सुना कि जी फलां इतने बूढ़े हो गए, बेड रिडन भी हो गए, लेकिन कुरान याद था। जितना कुरान याद की हुआ था वो पढ़ती रहती थी, नमाजें अपनी याद थी। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपनी ताकत के दिनों के अंदर इसको अपना साथी बनाया था। इसलिए तो ये तो वाकई इस दुनिया में भी जब सारे लोग साथ छोड़ जाते हैं ना, तब ये आपका साथी रहता है कुरान, अकल के फिर जाने से महफूज रखता है। तो सारी चीजें भी भूल जाती हैं या सारी कोई भी चीज नहीं याद रहती, तो कुरान याद है। कैसे? कितनी बड़ी हैरत की बात है ना। तो ये ना भूलिएगा कि गुजरता हुआ ये वक्त हमें इसकी तरफ ले जा रहा है, अगर हम जिंदा रहे तो, वरना बाज को तो अल्लाह वैसे ही फौत कर देता। तो या तो मौत लिखी हुई है या ये है चीज। अब इंसान की ना एक ऐसी पिक्चर दिखाई गई कि वो हथियार डाल दे, ऐसे लगता है ना कि क्या है फिर मेरे हाथ में, हथियार डाल के सबमिट क्यों नहीं फिर कर देते उस ताकतवर जात के सामने जो इन्नल्लाहा अलीमुन कदीर, जो अलीम भी है कदीर भी है, जिसका इल्म जायल नहीं होने वाला, कभी खत्म नहीं होने वाला, वक्त के गुजरने के साथ कम नहीं हो जाता, जिसकी ताकत में कभी कमी नहीं आती, हमेशा कुदरत वाला है, वो हमेशा से इल्म वाला है और हमेशा तक है। तुम हो जिसकी ताकत भी खत्म हो जाती, कुदरत भी खत्म हो जाती, इल्म भी खत्म हो जाती, हत्ता के दोबारा बच्चे बन जाते। अल्लाह ताला की जात इससे पाक है, उसके सामने क्यों नहीं फिर झुक जाते? एक ऐसा इंसान जिसकी ताकत जाहिर होने वाली हो, इल्म जाहिर होना, उसके सामने क्यों नहीं झुकता? जिसकी ताकत को जवाल नहीं, जिसके इल्म को जवाल नहीं। कितना बड़ा मैसेज है ना इंसान के लिए। अपने आप को जरा इस जगह पे खड़े करके देखिए, ये आयत नहीं है, हमें हमारी जिंदगी दिखा रही, एक आईना है। अपने आप का फ्यूचर देखें इसके अंदर। ये अगर जिंदगी चलती गई चलती गई चलती गई तो फिर ये है, तो फिर क्यों ना सबमिट करते हैं आज? क्योंकि एक दिन तो हमारा जिस्म भी सबमिट कर देगा, हमारी अकल भी सबमिट कर देगी। फिर नाज किस बात का, फिर गरूर किस बात का, फिर बातें किस बात की, फिर झगड़े किस बात के, फिर दलीलें क्यों दे रहे? तुम नहीं झुकोगे तो एक दिन अल्लाह ताला खुद झुका देगा, तब भी तो झुकना ही है ना। आप देख लें एक ही बात बार बार पूछते जाते हैं, मेमोरी खत्म हो जाती है, बार बार वही सवाल, बार बार वही बातें। इंसान सोचता है ये वही है, ये तुम्हारी अम्मी ऐसे होती थी, ये तुम्हारे अब्बा ऐसे होते थे, उनकी एक डांट होती थी, उनके घर के अंदर कितना रूबार दबदबा होता था, बच्चे बन गए बिल्कुल। अपने सामने हम देखते हैं फिर भी अपने आप को नहीं कभी सोचते, अपने सामने अपने बुजुर्गों को देखते हैं, अपने सास ससुर को देखते हैं, या अपने हर एक घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, अगर उनकी इतनी जिंदगी होती तो देखते नहीं है, फिर खुद क्यों नहीं होश से काम लेते, फिर क्यों नहीं गौर फिक्र करते? कैसी ये हयात है ना इंसान को झंझोड़ देने वाली, अंदर तक जो झंझोड़ दे इंसान को, कि उसको ला के हकीकत में खड़ा कर दे। ये जो फूल्स वर्ल्ड में हम रहते हैं ना, ख्वाबों की दुनिया है, पता नहीं किधर दुनिया में गुम है, झंझोड़ के ऐसे लगता है किसी ने हमारी आंखें खोल दी, हकीकत दिखा दी। फिर भी अगर सो ही रहे, फिर भी सुन के भी सुना नहीं, तो क्या पाया।